नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो कल हमने चर्चा की, जब चैतन्य महाप्रभु अब दक्षिण भारत की यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं और कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस यात्रा के प्रारंभ में ही एक सुंदर श्लोक से चेतावनी दे रहे हैं, जिसकी चर्चा हमने कल की थी, जिसमें वो कह रहे हैं, अलौकिक लीला यार न हय विश्वास, इहा लोक परलोक तारा हय नाश। श्री चैतन्य महाप्रभु की ये जो लीलाएं हैं, यदि कोई व्यक्ति इन पर विश्वास नहीं करता, अलौकिक लीला न करे विश्वास, इन अलौकिक लीलाओं के ऊपर यदि कोई विश्वास नहीं रखता, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, इह लोक परलोक तार हय नाश। इस लोक में और परलोक में उस व्यक्ति का सर्वनाश निश्चित है। तो वो चेतावनी दे रहे हैं और इसके उपरांत वो लीला को आगे बढ़ाते हुए सुनाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अब कीर्तन नृत्य विचरण करते हुए वो कहां पर पहुंचते हैं। ए माता यैते यैते गेला कूर्म स्थाने, कूर्म देखी कैला तान रे स्थवन प्रणामे। भ्रमण करते हुए चैतन्य महाप्रभु कूर्म स्थान पर आते हैं। स्थान का नाम है कूर्म और यहां पर चैतन्य महाप्रभु, इसे कूर्म क्षेत्र भी कहते हैं, जहां पर भगवान श्री कूर्मदेव का मंदिर है। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो मंदिर है भगवान श्री कूर्मदेव का, ये बहुत ही विशेष मंदिर है। और एक समय यह घटना हुई जब श्रीपाद रामानुजाचार्य, जो श्री संप्रदाय के आचार्य हुए, वो भ्रमण करते हुए वो जगन्नाथपुरी पहुंचे और जगन्नाथपुरी में उन्होंने जब श्री जगन्नाथ जी की सेवा देखी, अर्च विग्रह की सेवा देखी, तो आप लोग भी जानते होंगे कि वहां के जो पंडा हैं वो जगन्नाथ जी को भगवान की तरह व्यवहार नहीं करते, वो जगन्नाथ जी को अपना मित्र, अपना सखा, इस प्रकार से उनकी पूजा होती है। कई बार तो वो जगन्नाथ जी को कालिया कहकर भी पुकारते हैं। तो जब रामानुजाचार्य ने ये देखा कि ये जो रागानुगा स्टाइल की जो इनकी अर्चना है श्री जगन्नाथ जी की, ये ठीक नहीं है, ये अपराध है, तो वो सब पंडाओं को बुलाकर उनको ठीक से वैदिक विधान के अनुसार कैसे अर्च विग्रह की आराधना होनी चाहिए वो सिखाने लगे। और ये पंडाओं को तो कुछ समझ में नहीं आया, इतने सारे नियम, वो तो अपने प्रेम में श्री जगन्नाथ जी की प्रेमवश इस प्रकार से सेवा करते थे जो जगन्नाथ जी स्वीकार करते थे। तो उस रात रामानुजाचार्य के सपने में जगन्नाथ जी आए, जैसे जगन्नाथ जी बहुतों के सपनों में आते हैं, तो जगन्नाथ जी रामानुजाचार्य के सपने में आए और क्या किया, एक तमाचा लगाया, ये कहते हुए कि ये सारे जो पंडा हैं ये अपनी प्रेमा भक्ति से मेरी सेवा कर रहे हैं और इन्हें करने दो जो ये कर रहे हैं, मुझे बहुत आनंद आ रहा है इनकी सेवा में। और जब रामानुजाचार्य को इस प्रकार से तमाचा लगाया तो सुबह रामानुजाचार्य अपने आप को कहां पाए, कुर्मक्षेत्र में पाए। कुर्मक्षेत्र थोड़ी दूरी से है जगन्नाथपुरी से, और वहां पर जब उन्होंने भगवान श्री कुर्मदेव का दर्शन किया तो उन्हें लगा कि ये शिवलिंग है, तो तुरंत वहां पर उन्होंने एक उपवास सा शुरू कर दिया कि मैं जो भगवान श्री विष्णु का भक्त हूं मैं यहां पर कहां आ गया। परंतु फिर जब श्रीपाद रामानुचार्य को पता लगा कि ये भगवान श्री विष्णु हैं, कूर्मदेव जी हैं, तब फिर वो मंदिर जो है वहां पर प्रसिद्ध हुआ। तो यहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कूर्मदेव के सामने, देखिए वो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा कृष्ण हैं, वो कूर्मदेव के सामने उसी अवस्था में कीर्तन नृत्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल जब राधा कृष्ण को कोई मंदिर हो तभी जाकर हमें कुछ वो भावना होती है कि कीर्तन नृत्य किया जाए। अब देखिए कूर्मदेव की जो मूर्ति है वो रामानुजाचार्य को तो समझ में नहीं आए कि कूर्मदेव हैं कि शिवलिंग हैं कि कौन है, परंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण से कुछ संबंधित देख रहे थे इसीलिए वो उसी भावना में नृत्य और कीर्तन कर रहे थे जिस भावना में वो जगन्नाथ जी के सामने किया करते थे। और यहां पर जब श्री चैतन्य महाप्रभु अब पहली दफा कुर्मक्षेत्र में, और कुर्मक्षेत्र कोई बहुत विख्यात क्षेत्र नहीं है, कोई बहुत विख्यात तीर्थ स्थान नहीं है, साधारण से लोग वहां पर रहते हैं, गांव सा है, अभी भी वो गांव सा है, सोचिए 500 वर्ष पूर्व किस प्रकार का साधारण सा गांव सा रहा होगा वो। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब कीर्तन प्रारंभ किया और वो भाव विभोर हुए और सारे जो भाव विभोर होने के लक्षण हैं वो उनमें जब वहां के गांव वालों ने देखा तो सारे गांव वाले जो हैं वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। और जैसे चैतन्य महाप्रभु अन्य गांवों से जब गुजरते तो केवल जैसे हमने कल चर्चा की कि उनका दर्शन करने मात्र से लोग कीर्तन प्रारंभ कर देते, चैतन्य महाप्रभु किसी को कहते नहीं थे कि कीर्तन करो, भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण महामंत्र करो, अपने आप ही देखते हुए चैतन्य महाप्रभु को देखते हुए वो नृत्य और कीर्तन प्रारंभ कर देते। तो यहां पर पूरा गांव चैतन्य महाप्रभु को जब देखे तो पूरा गांव कीर्तन प्रारंभ कर दिया। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी सुंदर श्लोक में वो सुना रहे हैं कि ये सारे गांव वाले कुर्मक्षेत्र के वो किस प्रकार से कीर्तन कर रहे थे। दर्शने वैष्णव हैले बले कृष्ण हरि, प्रेमावेश नाचे लोक ऊर्ध्व बाहु करी। दर्शने वैष्णव हरिल बले कृष्ण हरी। दर्शन करने मात्र से, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने मात्र से वो कृष्ण हरि ये नाम इनका उच्चारण करना प्रारंभ किया उन्होंने। और बहुत ही विशेष वो यहां पर उल्लेख कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, प्रेमावशे नाचे लोक ऊर्ध्व बाहु करी, कि प्रेमावश प्रेम के आवेश में आते हुए ऊर्ध्व बाहु करी कीर्तन। ऊर्ध्व बाहु करी का अर्थ क्या है कि अपने दोनों हाथ ऊपर कर कर वो कीर्तन कर रहे थे। तो ये जो कीर्तन की शैली है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में जो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया, ये देखिए कीर्तन की शैली कितनी सुसंस्कृत शैली है, अपने दोनों हाथ ऊपर कर कर। और इसके बहुत से कारण भी हैं। कई बार लोग ये पूछते हैं कि आप ये कीर्तन करते समय दोनों हाथ ऊपर क्यों करते हैं। जैसे एक बार हमारे एक भक्त से पूछा गया था कि ये कीर्तन करते समय आप दोनों हाथ ऊपर क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया, जैसे यदि कोई चोर आपके घर पर आ जाए या आपको यदि पुलिस पकड़ ले तो बंदूक दिखाते हुए पुलिस क्या कहती है, हाँ? देखा है पिक्चरों में, हैंड्स अप। एक और शब्द सरेंडर, बंदूक दिखाते हुए क्या कहते हैं वो लोग, सरेंडर। सरेंडर का अर्थ क्या है, शरणागत हो। तो जब बंदूक दिखाई जाती है तो अपने आप दोनों हाथ ऊपर चले जाते हैं। और वो दोनों हाथ ऊपर करने का प्रयोजन क्या है, कुछ नहीं है। देखिए दोनों हाथ ऊपर हैं, खाली हैं, कुछ नहीं है। तो हमारे मंदिर के एक ब्रह्मचारी वो बता रहे थे कि जब वो पहली बार मंदिर में आए और कीर्तन में जब भाग लिया तो जो कीर्तनकार थे उन्होंने कीर्तन से पहले कहा सबसे कि हाथ ऊपर कर कर कीर्तन कीजिए। तो इन्हें ये हाथ ऊपर कर कर कीर्तन कर रहे हैं बहुत शर्म आ रही थी। और वो कीर्तनकार के बोलने से पहले इन्होंने मन में ठान लिया था कि मैं ये हाथ ऊपर कभी नहीं करूंगा। तो सभी हाथ ऊपर किए थे और हाथ नीचे कर कर ठान लिया था हाथ ऊपर नहीं करना है। तो संडे फीस्ट का कीर्तन था, इतने लोग थे, भीड़ थी। तो कीर्तनकार माइक पर कहते हैं, उन्होंने देखा नहीं इनको परंतु माइक में ऐसे ही कह दिया, परमात्मा ने प्रेरणा दी। तो उन्होंने कहा कि जो हाथ ऊपर नहीं कर रहे, अर्थ क्या है इसका कि पाप का बोझा कंधे पर इतना भारी है कि हाथ ऊपर नहीं हो पा रहा उनका। तो अब ये भक्त ने जब ये सुना तो तुरंत दोनों हाथ ऊपर गए और क्या शुरू किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। उनको बताया गया कि कंधों पर जब पापों का भार इतना रहता है तो हाथ ऊपर उठना मुश्किल हो जाता है, परंतु यदि हाथ ऊपर, यदि कंधों पे कुछ है आपके, मान लो किसी ने कुछ रख दिया कंधे के ऊपर और आपने हाथ ऊपर किया तो क्या होगा, जो कंधे पर रखा है पीछे गिर जाएगा कि नहीं। तो वैसे ही जो पापों का भार हम उठाए हैं इतने जन्मों से, जब हाथ ऊपर करते हैं तो केवल हाथ ऊपर करने मात्र से वो पापों का भार नीचे गिर जाता है। हालांकि हिरण्यकश्यपु ने भी ऐसी तपस्या की थी हाथ ऊपर करकर। भागवत में वर्णन है हिरण्यकश्यपु ने कैसी तपस्या की थी, दोनों हाथ ऊपर और अपने पैरों के अंगूठे के ऊपर वो खड़ा था। और नजरों को ऊपर किए हुए, सर को ऊपर और आंखों के ऊपर देखते हुए, बहुत कठिन है ये आसन। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप भी हाथ ऊपर किया था, परंतु वो कीर्तन नहीं कर रहा था, वो तपस्या कर रहा था कैसे वो भगवान विष्णु को मार पाए, इसलिए वो तपस्या कर रहा था। और एक उत्प्रेक्षा दी जाती है कि जैसे संकीर्तन आंदोलन, इसकी तुलना एक प्रज्वलित अग्नि की तरह है, इससे की गई है। जैसे अग्नि की जो लपटें होती हैं, वो चाहे आप अग्नि को कैसे भी पकड़ें, वो हर समय अग्नि ऊपर जाती है, अग्नि हर समय ऊपर जाती है। तो उसी प्रकार से जब भक्त एक साथ होकर हाथ ऊपर कर कीर्तन करते हैं, तो उनके जो हाथ ऊपर हैं, ऊर्ध्व बाहु करी, यहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, तो उनके ऊपर जो हाथ हुए हैं वो अग्नि की लपटों के समान हैं, वो अग्नि के लपटों के समान हैं जो हमारे हृदय के सारे जो कलमश है उनको जलाकर राख कर देंगी। और एक योगी बता रहे थे, जो योगासन सिखाते हैं, वो योगी बता रहे थे कि योगासन में जब इस प्रकार से हाथ ऊपर किया जाता है, और कोई आसन होता है जो जिसमें हाथ ऊपर करना होता है, कई ऐसे आसन हैं, ताड़ासन एक आसन है जिसमें हाथ ऊपर करना पड़ता, ताड़ के वृक्ष के समान खड़ा रहना पड़ता है, हिरण्यकश्यप वही आसन कर रहा था, ताड़ासन। तो ये योगी बता रहे थे कि जब हाथ ऊपर कर आसन किया जाता है तो वो हृदय के लिए सबसे ज्यादा स्वास्थ्यजनक है, हृदय के लिए। तो हमने कहा कि हाथ ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने जो कीर्तन करना सिखाया है वो वास्तविक रूप में सबसे अच्छा आसन है हमारे हृदय को साफ करने के लिए, क्योंकि अष्टांग योग का ये जो आसन है, हाथ ऊपर कर जो आसन होगा, वो तो केवल बाहरी हृदय को स्वस्थ बनाएगा, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने देखिए दोनों दे दिया, अष्टांग योग और भक्ति योग एक ही में, कि हाथ ऊपर कर जब कीर्तन करोगे तो बाहरी हृदय और आंतरिक हृदय दोनों स्वस्थ रहेगा। चेतो दर्पण मार्जनम, अंदर से भी पूरा मार्जन होकर साफ हो जाएगा पूरा हृदय। तो इसलिए यहां पर चैतन्य महाप्रभु को उस प्रकार से नृत्य करता देख कुर्म क्षेत्र के सारे रहवासी वो भी ऊर्ध्व बाहु करी प्रेमावश कीर्तन नृत्य, अपने हाथ ऊपर कर चैतन्य महाप्रभु के ही समान वो। और हम देखते हैं कि कई बार जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो तुरंत हाथ ऊपर कर देते हैं, जैसे ही देखते हैं कि इतने सारे लोग कीर्तन में हाथ ऊपर किए तो छोटे बच्चों को देखे वो तुरंत हाथ वो भी ऊपर कर देते, परंतु उनके पिताजी को थोड़ा टाइम लगता है माता पिता को थोड़ा टाइम लगता है हाथ ऊपर करने में तो इसलिए कहा गया है कि यमराज जब यमदूतों को भेजेंगे यमपाश के साथ, तब तो सरेंडर करना ही पड़ेगा, शरणागत होना ही पड़ेगा। इसीलिए वो समय आने से पहले ही जब प्राण हमारे हैं, अंदर जीवित हैं, हम शक्ति हैं, तो क्यों ना हम हाथ ऊपर कर उन भगवान का कीर्तन करें, ताकि अंत समय यमराज के सामने हाथ ऊपर न करना पड़े। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से तो उन्होंने इतना सरल बना दिया है कि बहुत देर तक ऊपर नहीं रखना है। एक बार वो लीड सिंगर ऊपर करता है तो वो उस समय हाथ जोड़कर खड़े रहना है जब वो गाता है, जब हमारा समय आता है तो एक महामंत्र के लिए, उसके बाद में रेस्टिंग टाइम दिया जाता है तो इससे सरल और क्या होगा। इससे सरल और क्या उपाय होगा हमारे पापों को नाश करने का कि केवल हाथ ऊपर कर लिया और इस जिह्वा को हरे कृष्ण महामंत्र में लगा दिया, सारे पापों का नाश। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर सभी को वैष्णव बना रहे थे और कहा गया है कि पूरे कुर्म क्षेत्र को हरिनाम से, हरिनाम की एक बाढ़ आ गई चैतन्य महाप्रभु जब वहां पर आए। और यहां पर जब एक ब्राह्मण, वहां का वैदिक ब्राह्मण उसको कहा गया है, उन्होंने जब श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा तो इस ब्राह्मण का नाम था कूर्म ब्राह्मण। ये कूर्म ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं और चैतन्य महाप्रभु को वो निमंत्रण देते हैं। कोई परिचय नहीं, केवल चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया, ऐसा नहीं कि कोई आकर इंट्रोडक्शन दिया चैतन्य महाप्रभु का कि ये युगावतार हैं और नवदीप से आए हैं और साक्षात कृष्ण हैं, किसी ने परिचय नहीं दिया। अपने से ही सभी आकर चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण देते थे। कूर्म नामे से ग्रामे वैदिक ब्राह्मण बहु श्रद्धा भक्ति कैल प्रभुर निमंत्रण। कूर्म नामे से ग्रामे वैदिक ब्राह्मण, उस ग्राम में कूर्म नाम का वैदिक ब्राह्मण रहता था। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी देखिए, वो जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, कितना वो ध्यान से शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। तो इस कूर्म ब्राह्मण ने जब चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया अपने घर पर आने के लिए, तो वो निमंत्रण कैसे दिया इसका विश्लेषण कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। बहु श्रद्धा भक्ति कैल प्रभुर निमंत्रण, बहु श्रद्धा और बहु भक्ति। ऐसा नहीं कि केवल औपचारिकता से बुलाया कि भाई कोई साधु हैं तो चलो हमारा पाप भी खत्म कर देंगे, तो इनके चरण हमारे घर पर आएंगे तो हमारा जो भी पाप है वो भी खत्म हो जाएगा। तो एक औपचारिक दृष्टिकोण से बुला लिया जाए इन साधु को, श्रद्धा से और भक्ति से। तो इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जब हम भक्तों को निमंत्रण देते हैं तो वो निमंत्रण श्रद्धा से होना चाहिए और भक्ति से होना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी को बहुत से ये लाइफ मेंबर बुलाए करते थे अपने घरों पर, परंतु प्रयोजन क्या हुआ करता था कि स्वामी जी आकर हमारे घर का सारा पाप जो है झाड़ू पोछा मारकर निकालेंगे। तो स्वामी जी को यूज किया जाए झाड़ू पोछा हमारे पाप का निकालने के लिए। जैसे हम लंदन में थे तो एक भक्त ने हमको घर पर बुलाया और प्रसाद के लिए बुलाया, तो उन्होंने कहा कि ये आइटम हम बना रहे हैं आपके लिए। एक लंबा लिस्ट था ये सारे आइटमों का, तो पहली बार हमने देखा कि कोई पहले मेन्यू कार्ड दे रहा है, घर पर बुलाने से पहले बता रहा है कि ये सब कुछ बनाने वाला, और बहुत लंबा लिस्ट था। तो हमने कहा भाई इतना सब कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो हमने कहा बस सादा कुछ बना दीजिए, इतना सब बनाने। नहीं नहीं नहीं, आप आइए, आप लीजिए, नहीं आप आ रहे हैं आपके लिए हमको बनाना ही है। तो बहुत ज्यादा आग्रह कर रहे, इतना आग्रह कर रहे, तो हमको लगा कि भाई इतना कैसे आग्रह, वो भी कह रहे थे कि नहीं यही खाइए आप। तो फिर हमने पूछा कि यही खिलाने के लिए इतना आग्रह क्यों कर रहे हो, तो फिर वो थोड़ा हल्के से हमको कोने में ले जाकर कहते हैं आप आइए बोल दीजिए कि आप खाने वाले हैं, क्योंकि इसी बहाने घर में कुछ पकेगा जो मैं भी ये खा सकता हूं, नहीं तो रोज वही खिचड़ी दाल चावल वही खाने मिलता है, तो इसलिए मैं बुलाते रहता हूं आप लोगों को ताकि आपके बहाने कुछ मुझे भी कई बार कुछ मिल जाता है खाने के लिए। तो हमने कहा ठीक है ठीक है, तो जो मेनू है वही रखिए और हम आएंगे आपको खिलाने के लिए। जैसे एक बार एक कथा एक साधु की, एक साधु मधुकरी करते करते गांव में गुजर रहे थे, तो एक घर के सामने जब पहुंचे तो गांव वालों ने इस घर में मत जाना, इस घर में कभी मत जाना। तो उन्होंने पूछा क्यों? ये घर में नास्तिक लोग रहते हैं, अपमान करेंगे आपका। वहां फिर तो मुझे जाना चाहिए यहां पर। गांव वाले बोले अपमान करेंगे और कहते जाना चाहिए, तो गए। तो जो व्यक्ति दरवाजा खोला, देखा कि एक तो कोई साधु है और कुछ मांगने आया है भगवान के नाम पर, रुको मैं देता हूं कुछ। तो अंदर गया, रसोई घर के चूल्हे से कुछ राख लेकर आया, राख होती है चूल्हे के अंदर, वो राख लेकर आया और उसके झोले में ये ले राख, चाहिए कुछ चाहिए ना, ये ले। तो वो धन्यवाद किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बाकी जो देख रहे थे, सभी देख रहे थे कि अभी क्या होगा, ये जा रहा है इनके घर में मधुकरी मांगने, तो क्या होगा। देखा है इतना अपमान किया है, राख दिया है झोली में। पूछा कि धन्यवाद क्यों कर रहे थे उसको? तो साधु ने कहा कि देखो, तुम लोगों के अनुसार ये पहले किसी साधु को कुछ नहीं दिया करता था, परंतु आज इसने प्रारंभ किया है कुछ देना, आज इसने प्रारंभ किया है कुछ देना। आज ऐश दिया है, कल कैश देगा। मैं ऐसे कह रहा हूं। तो यहां पर देखिए, और कई बार ऐसा होता है कि जैसे प्रभुपाद जी के पास कई लोग आते थे, और जैसे हमने कहा कि वो एक कोई साधु को यूज करना चाहते थे। तो एक बार प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, तो एक व्यापारी भारतीय वो आए प्रभुपाद के सामने और मांगने लगे, स्वामी जी हैं तो वरदान कुछ दीजिए, इच्छा पूरी कीजिए, आशीर्वाद बाबा, आशीर्वाद बाबा मनाते हैं ना, आशीर्वाद दीजिए। तो वो मांगने लगे, कहते हैं स्वामी जी मेरे जोड़ों में बहुत दर्द है। अब देखिए, श्रील प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त के सामने आकर क्या मांग रहे हैं। जैसे ध्रुव महाराज ने क्या कहा कि मैं कांच के टुकड़े ढूंढने आया था, परंतु हे भगवान आपका दर्शन के पश्चात अब मुझे एक बहुमूल्य हीरा मिल गया। तो ध्रुव महाराज तो कह रहे थे कि कांच के टुकड़े, परंतु यहां पर हम देखेंगे प्लास्टिक के टुकड़े, कांच के भी नहीं। मेरे जोड़ों में दर्द है, वो जोड़ों का दर्द। तो सभी भक्त ऐसे देखने लगे, प्रभुपाद जी ने भी ऐसे देखा, तो इसे लगा कि कुछ गलत पूछ लिया लगता है। तो फिर कहा कि नहीं वो छोड़ दीजिए, मेरी दादी जो है ना उनके जोड़ों में दर्द है। तो उसे लगा कि थोड़ा निस्वार्थ भावना प्रकट करेंगे तो खुश हो जाएंगे सब। तो फिर से सभी भक्त, दादी के जोड़ों में दर्द है, तो फिर उसने सोचा ये भी गलत पूछ लिया शायद मैंने। तो फिर पूछता है विश्व शांति के लिए मैं कुछ आपसे वरदान चाहता हूं कि पूरे विश्व में शांति हो, और विश्व की शांति सारे विश्व के जोड़ों का दर्द दूर हो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरा एक ही वरदान है, ये बैठे हैं ना मेरे शिष्य, ये सारे शिष्य सर मुंडवाए हुए गेरवा वस्त्र धारण किए हुए, ये मेरा वरदान है, चाहिए? जोड़ों का दर्द क्या, इस पूरे संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो जब वो देखे उसने कि अभी उसका वो व्यापारी बड़ा व्यापार परिवार देखा कि स्वामी जी ये वरदान देने वाले, स्वामी जी फिर कभी आता हूं मैं, देखते हैं फिर कभी। तो प्रभुपाद जी ने कहा आशीर्वाद बाबा चाहिए इनको, आशीर्वाद बाबा चाहिए, जो केवल नहीं, प्रभुपाद जी ने कहा कि एक डॉक्टर बाबा चाहिए इनको, एक डॉक्टर बाबा चाहिए जो इनके जोड़ों का दर्द दूर करे। परंतु देखिए जब श्रद्धा और भक्ति से किसी भक्त का स्वागत किया जाता है, जैसे महाभारत में वर्णन है भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर गए तो हस्तिनापुर में वहां पर दुर्योधन को पता था कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और दुर्योधन ये जानता था कि जो पांडव हैं ये सारे पांडव केवल ये कृष्ण के ऊपर निर्भर हैं, ये कृष्ण जो है ये मूल है, यथा तरोर मूल निषेचनेन। दुर्योधन सब फिलॉसफी जानता था कि ये कृष्ण जो है ये मूल है और ये सारे पांडव जो हैं इनके ऊपर निर्भर हैं। तो यदि मैं मूल को खरीद लूंगा तो सारे पांडवों को मैंने अपनी मुट्ठी में बंद करके खरीद लिया होगा। तो इसीलिए वो भगवान कृष्ण को घूस देने का प्रयास कर रहा था और बुला रहा था कि मेरे घर पर आइए 56 भोग शुद्ध घी में आपके लिए। जैसे उसने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण को अपने 56 भोग से वो प्रलोभित कर देगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि इस पूरी हस्तिनापुर में केवल एक ही परिवार है, एक ही व्यक्ति है जिसका घर मेरे लायक है और जिसका प्रसाद जिसका भोग मेरे लायक है, और वो है विदुर, वो है विदुर का घर। और भगवान कृष्ण दुर्योधन को कहते हैं कि तुम्हारा जो 56 भोग है वो 56 भोग नहीं, वो तुम्हारे अहंकार, तुम्हारी आसक्ति, तुम्हारी देहात्म बुद्धि का एक प्रतीक है। तो तुम्हारे 56 भोग के बजाय मैं यदि विदुर के घर में कुछ रूखा साख भी खाऊं तो वो मुझे ज्यादा प्रिय है। दुर्योधन का भोग न खायो, रूखो शाक विदुर घर खायो। तो देखिए इसके विषय में हम सोच रहे थे कि जब भगवान ने दुर्योधन का जो निमंत्रण है उसको स्वीकार नहीं किया और उसके बदले जब विदुर के घर गए और ये कहते हुए दुर्योधन को वहां पर जाके मुझे जो रूखा शाक मिलेगा वो ज्यादा रुचिकर है, वो ज्यादा प्रेम से भरा हुआ है, परंतु भगवान को वो रूखा शाक भी नहीं मिला वहां पर विदुर के घर पर। क्या मिला विदुर के घर पर? केले के छिलके। देखिए अगर कोई घर पर आता है और आप प्लेट में केले के छिलके लाकर दो, प्रभु जी आपका स्वागत है, केले के छिलके। तो विदुराणी वो भगवान श्री कृष्ण को केले के छिलके लाकर दे रही थी। तो यहां पर हम देखते हैं कि भगवान ने कुछ अपेक्षा की थी कि मुझे रूखा शाक मिलेगा वहां पर, तो बोल भी दिया दुर्योधन को। तो भगवान की कुछ अपेक्षा थी, कुछ आशा थी कि मुझे रूखा शाक मिलेगा, परंतु भक्त जो है भगवान की आशा से भी ज्यादा कुछ देते हैं। हालांकि बाहरी दृष्टिकोण से तो बहुत कम दिया और ऐसी चीज दी कि कोई जानवर को जैसे कोई दे देता है केले के छिलके, गाय को दे देते हैं जैसे, परंतु उन केले के छिलकों में भगवान ने जो अपेक्षा की थी कि रूखे शाक से जो मुझे कुछ आस्वादन मिलेगा उससे ज्यादा आस्वादन भगवान को केले के छिलकों में मिला। तो भगवान ने जो अपेक्षा की उससे ज्यादा रुचिकर कुछ दिया विदुराणी ने केले के छिलके के रूप में। और वही भगवान श्री कृष्ण आगे चलकर वो जब मिथिला गए तो मिथिला में मिथिला के जो नरेश, क्या नाम था उनका, राजा बहुलाश्व। राजा बहुलाश्व जो केवल वो राजा नहीं थे बल्कि वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत अनन्य भक्त थे, बहुत शुद्ध भक्त थे वो। और उसी मिथिला देश में एक बहुत ही साधारण सा ब्राह्मण जिसका नाम था श्रुतदेव। तो बहुलाश्व और श्रुतदेव दोनों एक साथ आए और दोनों ने एक साथ भगवान श्री कृष्ण को अपने घर में निमंत्रण दिया। तो अब दोनों शुद्ध भक्त हैं और दोनों एक साथ आए हैं और दोनों ने एक साथ अब बुलाया है घर पर, तो भगवान के लिए मुश्किल नहीं है। तो भगवान ने क्या किया, अपने आप को विस्तारित कर दिया और दोनों को पता नहीं लगा, दोनों को कहा कि हां मैं आऊंगा। तो एक कृष्ण गए बहुलाश्व के महल में और एक कृष्ण गए श्रुतदेव की कुटिया में। और दोनों को क्या लगा कि भगवान देखिए उसका निमंत्रण ठुकरा कर मेरे घर आए। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर अपनी टीका में वो ये प्रश्न पूछते हैं कि ये दोनों आदि इतने अनन्य भक्त थे तो भगवान को क्यों आना पड़ा, ये क्यों नहीं गए द्वारका, जब भगवान द्वारका में थे द्वारकाधीश के रूप में, ये क्यों नहीं द्वारका गए। तो बहुत ही सुंदर वो टीका में लिखते हैं कि क्योंकि बहुलाश्व और श्रुतदेव दोनों भगवान श्री कृष्ण के अर्च विग्रह की पूजा किया करते थे अपने घर पर, और दोनों ने व्रत लिया था कि हम कभी भी अपनी अर्च विग्रह की पूजा छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। तो क्योंकि उनकी अर्च विग्रह की पूजा और उनका व्रत इतना दृढ़ था तो भगवान ने सोचा कि मैं स्वयं आऊंगा इनके घर पर। तो स्वयं भगवान, सबसे विशेष प्रयोजन भगवान का मिथिला आने का इन दोनों के घर पर जाने का था। जैसे भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने कहा कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो, ऐसी सेवा करो कि भगवान देखने आए। तो ये दोनों ऐसी सेवा कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण की कि स्वयं भगवान द्वारका से निकले। और भगवान जब द्वारका से निकले तो सारे ऋषिगण सभी भगवान के पीछे आना शुरू किए। तो भगवान ने देखा ये सारे ऋषिगण यदि चलते चलते आएंगे तो पता नहीं मेरे साथ आ पाएंगे कि नहीं। तो भगवान ने कहा चलो मेरे रथ के ऊपर बैठ जाओ। तो सारे ऋषिगण ऐसे तो कभी हर समय पैदल ही जाया करते थे, परंतु अब भगवान ने आदेश दिया है तो सभी भगवान के साथ रथ पर बैठे। और भगवान ने सभी ऋषि मुनियों को भी अपने साथ ले गए वो। और जब श्रुतदेव के घर पहुंचे तो श्रुतदेव इतना निर्धन गरीब ब्राह्मण था कि ये जैसे आसन होता है हम किसी को देते हैं बैठने के लिए, तो वो आसन भी यहां वहां से किसी पड़ोसियों से मांग कर लाया था भगवान के लिए। और भगवान का मन कैसे बहलाया श्रुतदेव ने, भगवान के सामने श्रुतदेव खड़ा होकर अपनी चादर हिलाते हुए नृत्य शुरू किया। भगवान और कुछ नहीं है मेरे पास, आप घर पर आए हैं आपका मन बहलाने के लिए मैं हूं और ये चादर मेरी और मैं नृत्य करता हूं। तो भगवान को इतना आनंद हुआ श्रुतदेव इस प्रकार से भगवान का मन बहला रहे थे। तो देखिए इसलिए हम कह रहे थे कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव इसे कहते हैं, किस प्रकार से आतिथ्य करते हैं, एक जो सुसंस्कृत समाज में लोग होते हैं वो किस प्रकार से सोचे भगवान उनके घर उनके झोपड़े में आए, ये नहीं कि वो झोपड़े में कुछ गुण थे, गुण था श्रुतदेव उनके हृदय में। और जैसे कई बार आज हमें हमारे प्रभु जी ने बुलाया था तो इतना सुंदर उन्होंने सब कुछ व्यवस्था की थी, वो रंगोली वगैरह निकालना और इस प्रकार से जो कुछ वैदिक संस्कृति के अनुसार कैसे किसी का स्वागत किया जाता है। तो हम इन्हें बता रहे थे कि हम जब अमेरिका में थे तो किसी ने हमको घर पर बुलाया था और वहां पर वो पूरा परिवार सब प्रसाद का प्लेट हमको थमा दिए और वो भी हमारे साथ आकर बैठ गए और बोले और कुछ चाहिए तो अंदर से ले लेना अंदर किचन में। जैसे वहां पर ज्यादातर जब प्रसाद किसी को खिलाया जाता है तो उसको कहते हैं बफे सिस्टम, कि सब लाइन से लगा दिया जाता है और आप अपनी प्लेट लीजिए और खुद ही ले लीजिए और खड़े खड़े खाइए। बफे सिस्टम क्या है? खड़े खड़े। तो इसको हम बफे सिस्टम नहीं बफेलो सिस्टम कहते हैं, वो जैसे भैंस बकरी खड़े खड़े खाते हैं। तो ये पाश्चात्य संस्कृति है, भैंस की संस्कृति। जैसे एक चैतन्य चरितामृत में एक और कथा है कि एक ऐसे बहुत ही विशेष भक्त पार्षद थे चैतन्य महाप्रभु के, उनका नाम था कालिदास। और ये केवल इनका एक ही उद्देश्य रहता था कि कैसे मैं भक्तों का महाप्रसाद पाऊं, एक ही उद्देश्य उनके मन में भक्तों का। चैतन्य महाप्रभु कब जैसे ही कहां पर मौका मिला अवसर मिला तो महाप्रसाद, बस यही उनके मन में उन्होंने ठान लिया था कि भक्त हर एक भक्त नवदीप और चैतन्य महाप्रभु के हर एक पार्षद हर एक भक्त का महाप्रसाद मुझे खाना ही है पूरे जीवन में। ऐसा कोई भी भक्त नहीं होना चाहिए जिसका महाप्रसाद मैंने नहीं खाया। और ऐसा नहीं, कई बार हम भी दूसरों का महाप्रसाद लेते हैं परंतु देख कर लेते हैं कि प्लेट में जो हमको अच्छा लगता है, प्रभु जी थोड़ा महा आप देते नहीं, थोड़ा छीन के लेना होगा लगता है। और जैसे श्रील प्रभुपाद जी के एक सर्वेंट हुए तो वो प्रभुपाद जी को एक बार आकर शिकायत कर रहे थे, प्रभुपाद जी जब भी मैं आपका प्लेट ले जाता हूं बाहर तो सारे भक्त टूट पड़ते हैं महाप्रसाद महाप्रसाद, और बहुत मुझे समय बिताना पड़ता है। कोई कहता है मुझे वो दो, वो संदेश महाप्रसाद दो मुझे, कोई कहता है कि मुझे वो रसगुल्ला का महाप्रसाद दो, ये दो वो दो। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, कल से क्या करो, चाहे संदेश हो चाहे सब्जी हो चाहे शुक्ता, शुक्ता तो कड़वा होता है बाबा, सबको मिला दो पूरा, और सबको मिला दो और पूरा मिलाकर उसको फिर मेरे कमरे से बाहर जाओ। तो भक्त ने ऐसे किया, प्रभु का आदेश है तो ऐसे किया, पूरा मिला दिया सब, जो भी संदेश रसगुल्ला सबका, खिचड़ी बनाकर खिचड़ी सब्जी सब एक साथ डालकर, और जब बाहर गए प्रभुपाद का मां किधर है, प्रभुपाद जी का ही मां है। तो फिर एक कण देना थोड़ा सा, खाली क्वालिटी होना चाहिए, एक कण लिया, सब एक एक कण ले रहे थे खाली बस। परंतु ये जो कालिदास थे ये जब भी ये ऐसा महाप्रसाद लेते थे भक्तों का कि जो कोई और कल्पना भी नहीं कर सकता। एक बार ये जड़ू ठाकुर करके जो भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, उनके घर गए और उनके घर जाकर वो आम लेकर गए, आम खरीद कर लेकर गए, और विशेष रूप से आम जैसा फल लेकर गए, क्योंकि आम का जो फल है वो खाने के बाद उसके छिलके उसकी गुठलियां दो दो चीज मिलते हैं महा में, तो और कुछ नहीं, और कोई फल नहीं। जैसे अंगूर यदि ले जाते तो कुछ मिलता नहीं अंगूर में। परंतु वो आम लेकर गए और आम ले जाकर जड़ू ठाकुर को देते हैं, और जड़ू ठाकुर को कहते हैं कि ये मैं आपके लिए लाया हूं, कृपया इसे ग्रहण कीजिए। तो वो कहते हैं हाँ धन्यवाद करेंगे, नहीं नहीं कीजिए, नहीं हम कर लेंगे आपके लिए, हम क्या, नहीं 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 आप अभी कीजिए इसको ग्रहण कीजिए। तो वो बेचारे शर्मा रहे थे कि अभी ये लाए इनके सामने क्या शुरू हो जाए अभी। तो फिर वो कहे कि नहीं नहीं आप हम करेंगे, आपको यदि और कुछ काम है तो आप सेवा है तो आप जा सकते हैं। ऐसे क्या करो, बाहर आए कालिदास और बाहर आकर पेड़ के पीछे वो छुपे और प्रतीक्षा कर रहे हैं कब ये, क्योंकि उन्होंने देखा कि घर के बाहर वो कूड़ादान था, तो उन्होंने क्या किया कूड़ेदान को थोड़ा दूर रखा और प्रतीक्षा किए, कई घंटों तक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वो खाएंगे उसे और कब वो छिलका और गुठली बाहर कूड़ेदान में आएगी। और उसे दूर इसलिए रखा कि दूर रखा तो चलकर आना होगा, तो चलकर आएंगे तो चरण धूल भी मिल जाएगी नीचे की। देखिए ये उनकी उनकी धारणा देखिए कितनी शुद्ध थी। तो फिर कई घंटों तक रुके रहे, पेड़ के पीछे रुके रहे प्रतीक्षा कर रहे। तो फिर जड्डू ठाकुर और उनकी पत्नी ने जो कुछ आम थोड़ा बहुत खाया तो उनकी पत्नी ने लाकर बाहर कूड़ेदान में जैसे ही डाला, और वो जब अंदर गई तुरंत वो कूड़ेदान के ऊपर झपटे और पूरा महाप्रसाद लिया, और वो जो जहां पर वो चले थे उसके ऊपर लौटने लगे, उनकी चरण धूली लेने लगे। तो ऐसे ऐसे पार्षद हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के, जिन्होंने। और जब चैतन्य महाप्रभु एक समय जब वो प्रसाद ले रहे थे तो कालिदास जहां पर किसी को अनुमति नहीं थी, तो कैसे तो कालिदास पहुंच गए और खिड़की से देख रहे हैं कब खत्म करेंगे कि महाप्रसाद मिलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने सेवक को कहा कि ये महाप्रसाद और किसी को नहीं, कालिदास को ही मिलना चाहिए। और क्यों? क्योंकि कालिदास के अंदर इतनी श्रद्धा थी कि भगवान का भक्तों का महाप्रसाद खाने में। तो यहां पर कूर्म ब्राह्मण के विषय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया तो बहु श्रद्धा बहु भक्ति कैल प्रभुर निमंत्रण, कि श्रद्धा और भक्ति से उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया। और चैतन्य महाप्रभु फिर गए उनके घर पर, तो कूर्म ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु के चरण को धोया, पाद प्रक्षालन किया, और फिर वो चरणामृत स्वयं अपने सर पर उन्होंने डाला, परिवार वालों के सर पर डाला, और बहुत ही प्रेम से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित किए। और फिर कूर्म ब्राह्मण वो प्रार्थना करते हैं चैतन्य महाप्रभु से कि आज मेरा घर धन्य है, कि ये जो चरण जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ हैं, ब्रह्मा जी के लिए भी जो दुर्लभ है, क्योंकि ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे भगवान की नाभि से, तो भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए तो भगवान के चरण उनके पीछे थे, तो ब्रह्मा जी को भी इतना सौभाग्य नहीं मिला, कूर्म ब्राह्मण कह रहे हैं जितना मुझे मिला है, कि ये चरण जो उनको भी दुर्लभ है आज साक्षात मेरे घर पर आए हैं। और इस प्रकार से वो भगवान का गुणगान करने लगे, और फिर वो प्रार्थना कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष, कृपा कर प्रभु मोरे यान तो मा संगे सहिते न पारी दुख विषय तरंगे, कृपा कर प्रभु मोरे यान तोमा संगे, कि आज जो आपका संग मुझे मिला है तो कृपा कर हे प्रभु मैं यही याचना आपसे करता हूं, सहिते न पारी दुख विषय तरंगे, कि मैं जिस विषय तरंग में घूम रहा हूं इस संसार में, कृपा कर ये जो मेरी विषय तरंग है इससे बाहर आप मुझे निकालिए। तो देखिए यहां पर कूर्म ब्राह्मण वो अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि जब हम भक्तों के सामने जाते हैं तो किस प्रकार से हमें अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। यहां पर वो अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं कि हालांकि वो एक ब्राह्मण और इतने प्रगत ब्राह्मण थे वो, परंतु अपने आप को कह रहे हैं कि मैं वो विषय तरंग में फंसा हुआ हूं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी अपनी शिक्षाओं में गाया है, अइ नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भव अम्बुदौ, कि हे नंद तनुज मैं अपनी स्थिति आपको बता रहा हूं कि मैं एक विषैले सागर के अंदर फंसा हुआ हूं। अब देखिए कितने बार हमें ऐसा लगता है कि हम एक विष के सागर में फंसे हुए हैं, कभी लगता है ऐसा कि हम विष के सागर में फंसे हुए हैं? परंतु यहां पर चैतन्य महाप्रभु कूर्म ब्राह्मण ये सभी क्या कह रहे हैं, विषय तरंगे विष अम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थिति धूलि सदृशम, कि कृपा करके मुझे आप उठाइए और केवल अपने चरणों में इतनी सारी जो धूलि हैं आपके चरणों में उनमें से एक धूलिकण बना लीजिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से कूर्म ब्राह्मण वो अपनी स्थिति व्यक्त कर रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं होती हैं, दैन्य बोधिका, लालसामयी, या अलग अलग प्रकार की प्रार्थना होती है। तो कई प्रार्थनाएं हम भगवान के सामने हमें ऐसी करनी चाहिए कि हम भगवान का गुणगान करें, और कई प्रार्थना ऐसी होती है जिसमें हम याचना करते हैं, कुछ हमारी लालसा होती है, और कई प्रार्थना ऐसी होती है, ये तीसरी श्रेणी की प्रार्थना ऐसी होती है जिसमें दैन्य बोधि का, अपनी जो दैन्य स्थिति है उसको व्यक्त करना चाहिए। तो वो यहां पर कूर्म ब्राह्मण अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि भगवान के समक्ष कैसी प्रार्थना होनी चाहिए। पहले उन्होंने गुणगान किया भगवान का, और फिर अपनी जो दैन्य अवस्था है उसके विषय में वो चैतन्य महाप्रभु को कह रहे हैं। और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि मैं बस अब आपके साथ ही रहना चाहता हूं, मैं अपना परिवार का त्याग करना चाहता हूं, और ये जो विषय तरंग में मैं फंसा हुआ हूं इससे मुक्ति केवल मैं जब आपके संग में रहूंगा तभी वो हो पाएगी। इसलिए मुझे केवल सहिते न पारी दुख विषय तरंगे, आप अपने संग से मुझे दूर मत कीजिए, अब जहां पर भी आप जाएंगे मैं आपके साथ जाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने ये सुना तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत कूर्म ब्राह्मण को रोक दिए, नहीं 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 ऐसा मत कहो, प्रभु कहे ऐसे बात कभू ना कही बा, गृह रही कृष्ण नाम निरंतर लैबा। यहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि कैसे हम घर में गृहस्थी में रहते हुए भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और यही आदेश श्री चैतन्य महाप्रभु जहां पर भी गए उन्होंने यही आदेश जो उन्होंने कूर्म ब्राह्मण को दिया सभी को दिया, कि वो कह रहे हैं कि घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, ये बाहरी वैराग्य दिखाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु कहे ऐसी बात कभू ना कही बा, ऐसी बात कभी मत कहना फिर से। परंतु ये जो दूसरा वाक्य है ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पर वो कहते हैं गृहे रही कृष्ण नाम निरंतर लैबा, घर पर रहो परंतु घर पर रहकर क्या करो, कृष्ण नाम निरंतर लैबा। तो कई बार लोग जब शास्त्रों में ये सब कहा जाता है कि देखो शास्त्रों में कहा गया है गृहस्थ आश्रम कितना बड़ा है और गृहस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण है, यहां चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं, परंतु वो साथ साथ क्या कह रहे हैं कि उस घर में उस गृहस्थ आश्रम में मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, जब निरंतर कृष्ण नाम होता रहेगा तब। तो इसीलिए ये देखना चाहिए कि क्या मैं अपने घर में इस नियम का पालन कर रहा हूं कि नहीं। जैसे कई बार हम देखते हैं कि कई भक्त कृष्ण का नाम तो लेते हैं परंतु उसके साथ और भी बहुत कुछ होता रहता है घरों में। तो एक भक्त वो बता रहे थे, प्रभु जी अभी एक टीवी लिया है घर पर। तो फिर हमने पूछा फिर क्या प्रयोजन क्या है उसका, नहीं वो क्या है बच्चे कार्टून वगैरह देखते हैं ना बच्चों के लिए कार्टून शो, और फिर कहा वो संस्कार चैनल भी थोड़ा अच्छा आता है। तो हमने पूछा फिर वो संस्कार के अगल बगल में जो बेकार चैनल हैं, नहीं 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 वो गलती से कभी चला जाता है यहाँ, वो क्या है वो रिमोट से एक एक करके जाना होता है ना। तो कई बार कुछ ऐसे बहानों के कारण वो जो निरंतर कृष्ण नाम है उसमें अंतर आता रहता है, निरंतर नहीं रह जाता है। कार्टून शो, संस्कार, ये सब चीजें। जैसे जब मैं भक्ति में आने से पहले एक मेरा मित्र था, तो नया नया घर लिया था, शादी हुई थी, तो बता रहा था, बोल रहा था कि शादी से पहले मैं बोलता था वो सुनती थी, अब शादी के पश्चात मैं श्रवण आचार्य बन गया हूं, अब वो बोलती रहती है और मैं सुनता रहता हूं। और उसने कहा 5 साल बाद वो कहता है कि अब पड़ोसी सुनते हैं, अब हम दोनों बहुत बोलते हैं और खाली पड़ोसी सुनते हैं। तो एक भक्त एक बार अपने छोटे से अपने लड़के को लेकर आए और हम कुछ भक्त खड़े थे संडे फीस्ट के बाद, तो अपने बेटे को लेकर आए और कहे बेटा नरसिंह आरती सुनाओ। तो बेटे ने पिक्चर का गाना शुरू कर दिया, तो अब बेचारे अब उनका मुंह इतना सा हो गया, तो इतना जोर से उसको डांटा, बोला ये कहां से सीखा, बोला कल तो चल रहा था टीवी में। तो फिर प्रभु जी वो क्या है, वो चैनल आजकल बहुत सारे चैनल आते हैं ना, तो कई बार वो कार्टून शो से उसमें चला जाता है। परंतु यहां पर इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, चाहे कार्टून शो है, संस्कार है, या कोई भी क्या आजकल लोग कहते हैं, खाली न्यूज चैनल देखते हैं, न्यूज आजकल समाचार क्या हो रहा है, और वो ज्ञान की बहुत सी बातें आती हैं, साइंस का चैनल्स हैं ये सब। परंतु यहां पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जब व्यक्ति घर में निरंतर कृष्ण नाम लेगा तब जाकर मुक्ति निश्चित है, भक्ति निश्चित है, निरंतर कोई अंतर नहीं होना चाहिए उसके अंदर, कोई अंतराल नहीं होना चाहिए उसके बीच में। ये वास्तविक आदेश है चैतन्य महाप्रभु का हम सबके लिए। और भक्ति विनोद ठाकुर जो कि मैजिस्ट्रेट थे, वो अपने भजनों में लिखते हैं, जे दिन गृह भजन देखी गृहे ते गोलोक भय। वो कहते कि जब मैं घर में आता हूं अपने और मैं देखता हूं कि मेरा पूरा परिवार बैठकर जे दिन गृहे भजन देखी भजन में ही लगा रहता है, तो मुझे गोलोक वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर गोलोक वृंदावन है। गृहे ते गोलोक भय, तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं यही वास्तविक गोलोक है, यही वास्तविक गोलोक वृंदावन है, जहां पर सभी एकत्र होकर निरंतर कृष्ण नाम लय, निरंतर रूप से वो भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर ये प्रसिद्ध श्लोक जो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुख से श्री कूर्म ब्राह्मण को सुनाया, आगे उन्होंने कहा, यारे देख तारक कृष्ण उपदेश आमार आज्ञा गुरु होया तारे देश, कि बस इस आदेश का पालन करो हे कूर्म ब्राह्मण, यारे देख तारे कहो कृष्ण उपदेश, कि जिस किसी से भी तुम मिलो उसे कृष्ण का उपदेश दो, अमार आज्ञा होइया तार एई देश, अमार आज्ञा गुरु होइया, मेरी आज्ञा से इस प्रकार से तुम गुरु हो जाओगे और पूरे देश को पूरे विश्व को तार पाओगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और विख्यात आदेश चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने श्री कूर्म ब्राह्मण को दिया। और इससे हमें समझना चाहिए कि हमारी जो स्थिति है, हमारी स्थिति को देखते हुए हमें भक्ति में लगना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, यदि वो निरंतर कृष्ण नाम ले रहा है और यदि वो कृष्ण का उपदेश जिस किसी से भी मिलता है उसे सुना रहा है, तो वो चैतन्य महाप्रभु के नजरों में शुद्ध भक्त है, वो चैतन्य महाप्रभु के नजरों में भगवत धाम जाने के योग्य है। एक मध्व संप्रदाय के सन्यासी, उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि कई बार हमें लगता है कि नहीं, ये आश्रम इस आश्रम से ऊंचा है, कई बार लगता है कि ब्रह्मचारी आश्रम, सन्यास आश्रम वो गृहस्थ आश्रम से ऊंचा है, या कईयों को लगता है कि गृहस्थ आश्रम इन दोनों आश्रमों से ऊंचा है। तो इन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, इन्होंने कहा कि मछली देखिए वो पानी में जीवित रहती है, क्या वो कविता थी बचपन में, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हा? तो बस इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे जल जो है, पानी जो है, वो मछली का जीवन है और मछली जी पाती है क्योंकि उस पानी में है वो। परंतु यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि चलो मैं मछली को एक ऐसे तरल पदार्थ में रखता हूं जो जल से भी ज्यादा मूल्यवान है, तो मैं मछली को दूध में रखता हूं, तो जल से निकालकर यदि मछली को दूध में रख दिया जाए तो क्या मछली जिएगी? दूध मछली का जीवन नहीं, पानी मछली का जीवन है। तो जैसे मछली के लिए जीवित रहने के लिए पानी आवश्यक है, वैसे ही किसी को किसी आश्रम की आवश्यकता होती है। यह उदाहरण उन्होंने दिया कि यदि कृत्रिम रूप से, केवल बाहरी रूप से किसी को उठाकर किसी आश्रम में फेंक दिया जाए और कहे कि इसी में भक्ति करो, तो वो मछली को जल से उठाकर जैसे दूध में फेंक दिया जाए, तो हालांकि दूध का मूल्य पानी से ज्यादा होगा मार्केट में, एक लीटर दूध और एक लीटर पानी का रेट में बहुत अंतर है, परंतु मछली के लिए यदि मछली मार्केट में जाए तो मछली क्या खरीदेगी, चाहे ब्लैक का पैसा भी देना पड़े, पानी, दूध नहीं चाहिए। कोई यदि कहे अरे दूध का दही बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते, नहीं, पानी, केवल पानी। तो जैसे मछली के लिए पानी आवश्यक है, वैसे ही यहां पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कूर्म ब्राह्मण को कि तुम्हारे लिए घर में रहकर भक्ति करना, निरंतर कृष्ण नाम लइबो, यही तुम्हारे लिए उपयुक्त है। और कूर्म ब्राह्मण को भगवान ने वहां पर रोक दिया। और चैतन्य महाप्रभु अंत में एक बहुत ही सुंदर उपदेश और आदेश दे रहे हैं कूर्म ब्राह्मण को। वो कहते हैं कभू न बाधिबे तोमार विषय तरंग, पुनरपि थानी पाबे मोर संग। कि हे ब्राह्मण, तुम चिंता कर रहे हो तुम्हारे विषय तरंग के विषय में, तो कह रहे हैं कभू न बाधिबे तोमार विषय तरंग, कभी भी ये विषय तरंग जो है इसमें तुम बंध होगे नहीं। कैसे? पुनरपि एई थानी पाबे मोर संग, और मेरा संग प्राप्त करोगे हर समय तुम, यदि तुम भगवान का नाम निरंतर लेते रहोगे। तो जैसे प्रभुपाद जी जब अब प्रचार उन्होंने प्रारंभ किया था अमेरिका में और पहली बार अब भारत आ रहे थे, वो तो इतने सारे भक्त बन चुके थे, इस्कॉन स्थापित हो चुका था, तो ये सारे भक्त अब सोच रहे थे कि प्रभुपाद अब वापस जा रहे हैं भारत, पता नहीं अब वापस आएंगे कि नहीं। तो सारे भक्त रो रहे थे एयरपोर्ट पर, रो रहे थे कि पता नहीं प्रभुपाद वापस आएंगे कि नहीं। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि यदि तुम लोग सब भगवान का नाम लेते रहोगे यहां पर और मैं भगवान का नाम लेता रहूंगा जहां कहीं पर भी मैं हूं, तो हम संग कर रहे हैं एक दूसरे का उसके द्वारा। वही चैतन्य महाप्रभु यहां पर कह रहे हैं कि मैं जहां कहीं पर भी रहूंगा और मैं भगवान का नाम लेता रहूंगा और तुम यहां पर भगवान का नाम लेते रहोगे, पावे मोर संग, मेरे आदेश का पालन करोगे, तो उन आदेश का पालन करने के वजह से तुम हर समय मेरा संग करते रहोगे। तो यदि हमें गुरु का संग चाहिए, यदि हमें भगवान का संग चाहिए, तो जब हम आदेश पालन करेंगे भगवान का, गुरु का, तो हर समय हम उनका संग कर रहे हैं। और यदि हम शारीरिक रूप से भी निकट रहे गुरु और कृष्ण के, परंतु यदि आदेश का पालन नहीं कर रहे, तो हम बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं भगवान और गुरु से। इसलिए कहा गया है कि ये जो हरिनाम है, जो हमारी माला है, इसकी तुलना जब शिशु माता के गर्भ में रहता है तो शिशु माता से कैसे संबंधित रहता है, ये नाभि की जो नाड़ी होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड जिसे कहते हैं, जो बच्चे की नाभि नाड़ी होती है, नाभि का, उससे वो माता से जुड़ा हुआ रहता है और जो कुछ उसे झिलाने के लिए चाहिए उस नाड़ी से ही उसे सब कुछ मिलता है। तो ये जो हमारी माला है जिस पर हम जप करते हैं, ये माला जो है उस नाभि नाड़ी के समान है और ये हमें जिलाएगी, ये हमें भगवान के निकट रखेगी यदि इसे हम हर समय भगवान के नाम लेने में उपयोग में लाते रहेंगे। तो इसीलिए यहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ये आदेश दे रहे हैं कूर्म ब्राह्मण को कि यदि तुम उस आदेश का पालन करते रहोगे, निरंतर कृष्ण नाम लेते रहोगे, जिसे भी देखा उसे कृष्ण का उपदेश करते रहोगे, तो हर समय पावे मोर संग, हर समय मेरा संग भी पाओगे और इतना ही नहीं, मैं स्वयं हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा। तो क्या देखिए भक्ति की महिमा, देखिए कि यहां पर कूर्म ब्राह्मण सब कुछ छोड़कर भगवान के साथ जाना चाहते थे और भगवान कहते यदि तुम भक्ति करोगे अपने घर पर तो मैं आकर रहूंगा तुम्हारे घर पर हर समय निरंतर। यह है भक्ति की महिमा। और ये आदेश देने के पश्चात फिर चैतन्य महाप्रभु अब आगे निकलते हैं और चैतन्य महाप्रभु जब सवेरे होते ही बाहर निकलते हैं कूर्म क्षेत्र से, तो वो एक और बहुत ही विशेष ब्राह्मण से भेंट करते हैं जिनका नाम था वासुदेव। और इन्हें बहुत ही गहरा एक रोग हुआ था और चैतन्य महाप्रभु ने इस वासुदेव का किस प्रकार से उद्धार किया, बहुत ही सुंदर कथा है इसकी और इसकी चर्चा हम करेंगे कल शाम को। बोलो पतित पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की, शिल प्रभुपाद की, हिताय गौर प्रेमानंदी। तो कल के समान आज भी सभी भक्तों की प्रसन्नता के लिए हमारे भक्त यहां पर एक नाटक प्रस्तुत करना चाहेंगे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर।